अरमान ने नानी माँ को रोकने के लिए सिंघानिया हाउस उनके नाम करने को कहा। अरमान की बात सुनकर नानी माँ जल्दी से हंसते हुए बोली, अरे बिटवा कैसी बातें कर रहे हो, भला इस उम्र में जमीन जायदाद लेकर हम क्या करेंगे, और वैसे भी बेटा समझा करो, अभी तुम लोगों के हंसी खुशी खेलने कूदने के दिन है, तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं आप लोगों की भाषा में, प्रवेशी। अब नानी माँ की बात सुनकर सब कन्फ्यूज हो गए कि आखिर नानी कहना क्या चाहती हैं, लेकिन तभी आहान समझ गया और उन्हें करेक्ट करते हुए बोला, नानी माँ यू मीन टू से प्राइवेसी ना। तब नानी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ आहान बिटवा वही, उसी पर ध्यान दो और अच्छा वक्त बिताओ। तभी अविनाश और एंजल आगे आए और नानी माँ की ओर देखकर बोले, नानी माँ हम आपको जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, और गोरी तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब आस्था हैरानी से अपने भैया और भाभी को देखने लगी थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या भैया कैसा सरप्राइज़ हमारे लिए। जैसे ही आस्था ने बड़े प्यार से ये पूछा, एंजल तुरंत आकर आस्था के पास खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों को अपने हाथों से कवर करते हुए बोली, अभी रुको आस्था, इतनी जल्दी क्या है देखने की। अविनाश की बातें सुनकर सभी आस्था के सरप्राइज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अरमान की नज़रें आस्था पर ही गड़ी हुई थीं। तभी अचानक अविनाश ने कुछ नौकरों को हुक्म दिया कि उसकी बहन का सरप्राइज़ वहां लेकर आया जाए और तेज़ आवाज़ में बोला, आ जाओ अब। जैसे अविनाश ने ये कहा, धीरे धीरे एंजल ने आस्था की आंखों से अपने हाथ हटाने शुरू कर दिए थे। अब जैसे ही आस्था सामने की ओर देखने लगी, वो खुशी से उछल पड़ी और ज़ोर से चीख उठी, क्योंकि उसके सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे। अपने दादाजी को वहां देखकर आस्था तुरंत भाग कर उनसे लिपट गई थी। वहीं नानी माँ हैरानी से आस्था के दादाजी को देखने लगी थी। अधिराज जी को देखकर नानी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से हो गए थे, लेकिन तभी आस्था एक्साइटेड होकर बोली, भैया ये आपने दादाजी को यहाँ कैसे बुलाया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब कैसे हुआ। आस्था की एक्साइटमेंट देखकर अविनाश ने आस्था के कंधे पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ गोरी, शांत हो जाओ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो, तुम तो जानती हो ना दादाजी ने इतने सालों में कभी इस तरह लंबा ट्रैवल नहीं किया है, और इतने दिनों के बाद इतने लोगों के बीच आए हैं तो शायद थोड़ा घबरा गए होंगे, तुम फिक्र मत करो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सो डोंट वरी। अविनाश की बात सुनकर सभी हैरानी में डूब गए। तभी अधिराज जी ने आस्था के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा ये नकली टांगे हैं, अविनाश ने डॉक्टर द्वारा आर्टिफिशियल टांगों का इस्तेमाल करके अपने दादा को फिर से खड़ा करने में कामयाब हुआ है। ये सुनकर आस्था ने वापस अविनाश की ओर देखा और इमोशनल होकर बोली, भैया आप कहना चाह रहे हो कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। तभी अविनाश बोला, गोरी मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम दादाजी को समझा कर नहीं आती तो दादाजी कभी भी इस इलाज के लिए नहीं मानते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। वहीं तब तक अरमान के दादा आलोक जी ने अरमान को इशारा किया कि उसे जाकर फटाफट आस्था के दादाजी से मिलना चाहिए। दादाजी का इशारा मानकर अरमान धीरे धीरे चलते हुए आस्था के दादाजी के सामने जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि आज तक उसकी आस्था के दादाजी से फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी। एक दो बार आस्था ने वीडियो कॉल पर अरमान को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरह आमने सामने मुलाकात कभी नहीं हुई थी। अब जाकर अरमान उनके सामने झुककर आशीर्वाद लेने के लिए झुक गया था। एक पल के लिए दादाजी थोड़ा सा ठहर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अचानक अरमान के चेहरे की ओर देखा, खासकर उसकी आंखों को देखा, वो पूरी तरह घबरा गए थे। अगले ही पल उन्होंने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। आस्था अपने दादाजी के फिक्र में घबरा गई थी। तभी अविनाश आगे बढ़ा और उन्हें संभाल लिया। सभी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक से आस्था के दादाजी को क्या हो गया। फटाफट नौकरों को इशारा करके उन्हें हॉल में बने मिनी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां ध्रुव ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया था। पूरी जांच करने के बाद ध्रुव बोला, ये किसी गहरे शौक की वजह से बेहोश हुए हैं। ये सुनकर सब हैरानी से भर गए और सोचने लगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दादाजी डर की वजह से बेहोश हो गए। वहीं अरमान भी कन्फ्यूजन का शिकार हो चुका था, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी आस्था के दादाजी से नहीं मिला था। फिर अचानक दादाजी का यूं बेहोश हो जाना उसे एक अजीब सी दुविधा में डाल गया था। आस्था ने अरमान की दुविधा समझ ली। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, परेशान मत हुई अरमान जी, जरूर दादाजी किसी बात को लेकर पहले से परेशान होंगे या फिर अचानक घबरा गए होंगे, इसी वजह से शायद उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आस्था की बात सुनकर कहीं न कहीं सभी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अरमान अब ज्यादा देर वहां नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वो एक तरफ जाकर बैठ गया। इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद की और दादाजी का चेहरा याद करने की कोशिश करने लगा था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और दादाजी उसे देखकर इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे थे। और अचानक जैसे ही अरमान ने अपनी आंखें बंद की और अपने अतीत में जाने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से दृश्य आने लगे। ये दृश्य इतने क्लियर थे कि वो उन्हें ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक अरमान ने घबराकर अपनी आंखें खोल ली थी और वो पूरी तरह परेशान होते हुए सोचने लगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उन्होंने मुझे पहचान लिया है, और अगर उन्होंने आस्था को सब सच बता दिया तो आस्था मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरमान को कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर सताने लगा था। वो पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत उठकर आईने में खुद को देखा और खुद से बोला,
नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आस्था को अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए चाहे मुझे उसके करीबी और रिश्तों को ही क्यों ना खत्म करना पड़े, मैं वो भी करूंगा। ये कहते हुए अरमान का चेहरा और उसका अंदाज एक बार फिर बेहद खतरनाक रूप लेने लगा था। उसकी आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक लौट आई थी। इसके बाद वो बिना देर किए नीचे की ओर जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ नानी माँ, जो वहां से जाने की बात कर रही थी, उन्होंने आस्था के दादाजी से अभी तक ठीक तरीके से मुलाकात भी नहीं की थी। ऊपर से दादाजी की तबीयत यूं अचानक खराब हो जाने के कारण उन्होंने फिलहाल वहां से जाने का इरादा छोड़ दिया था। उन्होंने अपने बेटे बहू मनोज और सीमा को वहां से वापस भेज दिया था और कहा था कि वो कुछ दिन बाद आएंगी, फिलहाल वो यहीं रुकेंगी। अब जैसे ही अरमान नीचे आया, उसने देखा कि आस्था की आंखें इस वक्त घबराई हुई लगातार मिनी हॉस्पिटल की तरफ लगी हुई थीं। भले ही वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने दादाजी की सेहत को लेकर वो काफी हद तक परेशान थी। अविनाश ने आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ गोरी, शांत हो जाओ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम तो जानती हो ना, दादाजी ने इतने सालों में कभी इस तरह लंबा ट्रैवल नहीं किया है और इतने दिनों के बाद इतने लोगों के बीच आए हैं, वो शायद थोड़ा घबरा गए होंगे। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सो डोंट वरी। जैसे ही अविनाश ने आस्था को ये कहकर तसल्ली दी, आस्था नम आंखों से धीरे धीरे गर्दन हिलाने लगी थी। तभी आलोक जी ने आस्था और अरमान की ओर देखते हुए कहा, अब बेटा बहुत रात हो गई है, एक काम करो, अंश बेटा और आस्था बेटी को लेकर कमरे में जाओ। हमने अभी ध्रुव से बात की है, पूरी रात तुम्हारे दादाजी को आराम की जरूरत है, इस वक्त वो गहरी नींद में सो रहे हैं। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब यहीं उनके साथ रुकेंगे। जैसे ही कोई जरूरी बात होगी या उन्हें होश आएगा, हम सबसे पहले तुम्हें बुलाएंगे। अब आप लोग जाइए और आराम कीजिए।
लेकिन आस्था मजबूती से बोली, नहीं, हम दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने रिश्तों के नाम पर हमारे पास दादाजी और भैया ही तो हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे। तभी नानी माँ बड़े प्यार से आस्था को समझाते हुए बोली, अरे गोरी बेटा, अभी अभी शादी का फंक्शन खत्म हुआ है, इतने सारे कार्यक्रम हुए हैं, तुम काफी थक गई हो। अगर तुम जाकर आराम नहीं करोगी तो अपने दादाजी का ध्यान कैसे रखोगी? और फिर हम हैं ना, हम बूढ़ों को रात में वैसे भी कहाँ नींद आती है, हम यहीं बैठकर अधिराज जी का ध्यान रखेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें बुला लूंगी। ये सुनकर कहीं न कहीं अरमान को अंदर ही अंदर काफी डर महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर होश में आते ही आस्था के दादाजी ने उसे सब कुछ बता दिया या फिर मेरे बारे में कुछ कह दिया, तो क्या आस्था मुझे छोड़कर चली जाएगी? अरमान की हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपना सीधा हाथ उठाकर अपने माथे पर रख लिया और बेचैनी में उसे दबाने लगा था। ये दृश्य देखकर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। उनके मन में एक ही सवाल था कि आखिर अरमान को हुआ क्या है, वो इस तरीके से बार बार अपने सिर पर हाथ क्यों रख रहा है? अब तो क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो इस तरह से करने का क्या मतलब है? सभी समझ चुके थे कि कुछ तो ऐसा है जो अरमान को अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान कर रहा है। फिलहाल अब देर न करते हुए अरमान सीधा आस्था की तरफ बढ़ा और अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसके साथ ही उसने आंखों के इशारे से आहान को समझा दिया कि वो अंश को लेकर ऊपर आ जाए। आस्था अरमान को मना करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि अरमान उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसने भी शांति से अपना सिर अरमान के सीने पर टिका दिया। इसके बाद अरमान उसे लेकर सीधे कमरे में चला गया। वहीं ध्रुव ने तुरंत आहान को हल्का सा धक्का मारते हुए कहा, कछुए, जल्दी जाओ और अंश को भाभी के कमरे में छोड़कर आ, तूने देखा नहीं, भैया ने आंखों आंखों में तुझे इशारा किया था। ये सुनकर आहान हंसते हुए बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मैं ऊपर से सीधा अपने कमरे में ही चला जाऊंगा, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार कर रही होगी, अब तक तो उसने हमारी प्रिंसेस को भी सुला दिया होगा। ये कहते हुए उसने शरारती अंदाज में ध्रुव की तरफ आंख मार दी और उसकी ये हरकत देखकर ध्रुव भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। ध्रुव कुछ देर तक मुस्कुराहट के साथ आहान को जाते हुए देख रहा था। फिलहाल दादाजी ने सभी लोगों को अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। आखिर क्या चल रहा है अरमान के दिमाग में और आस्था के दादाजी को देखकर क्या याद आया है, उसे जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते